नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं निट्ठवियट्ठकम्मं वीरम्णमियूणपत्तसौवट्ठम् अणुभागस्सविहत्तिम् जहोवैसं परूवेम।
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जेधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पांचवी पुस्तक में अभी हम शुरू करने से पहले विषय परिचय को देख रहे थे। शुरू में जो प्रस्तावना का छठा पेज, वहां से हमने शुरू किया था। अभी हम प्रस्तावना के आठवें पेज पर आ गए हैं। अभी तक हमने क्या देखा है? देखो, ये अनुभाग किसको कहना, कर्मों की जो फलदान शक्ति है उसको अनुभाग कहते हैं। तो एक जीव एक समय में अनंत कर्म परमाणुओं का बंध करता है, परंतु वो सभी कर्म परमाणुओं में समान स्थिति या समान अनुभाग नहीं कहा होता। जो मैक्सिमम है उतनी स्थिति बांधी, ऐसा कहेंगे हम। निषेकों पर पहले घटित करेंगे, फिर अनुभागों पर, स्थिति पर पहले घटित करेंगे। तो जीव ने, किसी ने 70 कोड़ाकोड़ी सागर का मिथ्यात्व का बंध किया, ऐसा जब कहते हैं, तो बहुत सारे परमाणु जो अंतिम निषेक में स्थित है, निषेक रचना होती है ना, निषेक रचना में 7000 वर्ष तो आबाधा काल है, वहां कोई निषेक नहीं बने उस समय बंधे हुए, पूर्व के पड़े है उसकी बात नहीं है। तो 7000 वर्ष की आबाधा छोड़कर ऊपर एक 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 समय वाले 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक के निषेक होते हैं, यानी किन्हीं परमाणुओं में, अनंत में से कितने ही परमाणुओं में अनु वो उसकी स्थिति कितनी है, 7000 वर्ष और एक समय, फिर दो समय अधिक, तीन समय अधिक, चार समय अधिक, और थोड़े परमाणुओं में वो 70 कोड़ाकोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति बनती है, सभी में नहीं। फिर भी क्या कहेंगे उस जीव ने, बंद के समय से 70 कोड़ाकोड़ी सागर कहेंगे, 7000 उसमें से माइनस करेंगे 70 कोड़ाकोड़ी में से, इसकी स्थिति कितनी है, तो 70 कोड़ाकोड़ी। यहाँ निषेक कितने बने, तो 70 कोड़ाकोड़ी सागर के जितने समय है उसमें से ये 7000 वर्षों के समय बाद कर दो, तो जितने बचेंगे उतने उसके निषेक बने, उसकी स्थितियां बनी उसकी, परंतु वो अनंत कर्मों में से अलग अलग कर्मों में अलग अलग स्थिति बंधी है। ऐसे ही अनुभाग जो है, ये तो हमने निषेक रचना देखी, अनुभाग है उसको इस तरह से स्पर्धकों में बताते हैं। स्पर्धक क्या बताते कि इन जो सारे जो निषेक है उनमें कर्मों का अनुभाग कितना है, ये अनुभाग वाले कर्म किस पोजीशन है पर है उसकी बात नहीं चल रही है, वो कहीं भी हो सकते हैं, परंतु इनमें कितना अनुभाग है तो उसको कहेंगे ये इतने स्पर्धक है, अनंत स्पर्धक होते हैं। स्थिति जो है, निषेक जो है, वो असंख्यात ही हो सकते हैं, क्योंकि कितने ही सागर हो वो भी असंख्यात ही कहलाएंगे, उसके समय असंख्यात है, अनंत नहीं है। परंतु स्पर्धक में अनुभाग जो है, मिनिमम पॉसिबल भी उसमें भी अनंत अविभाग प्रतीक्ष है, और इसमें भी सारे अनंत अनंत स्पर्धक होते हैं ऐसे। तो उसमें हमने देखा स्पर्धक किसको कहना, तो वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहना। ये वर्गणाएं क्या होती है, तो वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग क्या है? तो यहां पर इस विषय में कर्म परमाणुओं को वर्ग कहा, क्यों? उनमें विशिष्ट अनुभाग है, फलदान शक्ति है, अविभाग प्रतिच्छेद है। अविभाग प्रतिच्छेद ये यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी। कर्मों में कितनी शक्ति है उसका एकक जिसको कहते हैं, यूनिट जो है वो क्या है? अविभाग प्रतिच्छेद। प्रत्येक पर्याय की शक्ति नापने के उसके अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। जैसे हमें जीव के शक्ति मापनी है कितना ज्ञान प्रकट है, तो उसके भी अपने अविभाग प्रतिच्छेद होंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण में उसके अपने अविभाग प्रतिच्छेद होंगे। इसी तरह से यह हमने देखे थे, जिनमें समान 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 अविभाग प्रतिच्छेद है, ऐसे परमाणुओं का जो ग्रुप है उसको हम वर्गणा कहेंगे। वो पहली वर्गणा जगन्य नीचे वाली, उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद, वो दूसरी वर्गणा, और एक अधिक तीसरी वर्गणा, और एक अधिक चौथी वर्गणा, ऐसे अनंत वर्गणा तक वो पूरा समूह उसको कहेंगे स्पर्धक। एक स्पर्धक के जो पहली वर्गणा है उसमें हमने अविभाग प्रतिच्छेद 100 माना था। वर्गणा कितने ही जाने के बाद जिस वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद दुगुना यानी 200 होता है, उसको वहां से दूसरा स्पर्धक शुरू होता है। फिर एक दो तीन चार ऐसे वहां भी अनंत वर्गणा होती है। जब ये तीन गुना होता है पहली वर्गणा में, तब वहां से तीसरा स्पर्धक हो, चार गुना वो चौथा स्पर्धक, पांच गुना वो पांचवा स्पर्धक, ऐसे स्पर्धक भी अनंत होते हैं। ये तो कल हमने विस्तार से देखा था इसको। अब ये जो हाँ गुणहानि की भी बात हमने देखी थी। यहाँ जो हम वर्गणाएं देख रहे हैं, प्रति वर्गणा नंबर ऑफ परमाणु घटते चले जाते ऊपर की ओर, अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता है और नंबर ऑफ परमाणु एक एक वर्गणा में घटते चले जाते हैं। जिस वर्गणा में अभी ये पहला स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, चौथा स्पर्धक मान लेते हैं, अभी ये एक दो तीन चार पाँच और ये छठे छह स्पर्धक हो गए, और सातवें स्पर्धक के पहली वर्गणा में ये परमाणु की संख्या आधी हो गई, तो क्या कहेंगे? ये सारे स्पर्धकों की एक गुणहानि कहेंगे, गुणित प्रमाण में हानि होती है उसको गुणहानि कहेंगे। यहाँ आधा होना उसको गुणहानि कहेंगे। अनुभाग हर समय हर यानी हर वर्गणा में अनुभाग तो बढ़ रहा है, परंतु नंबर ऑफ परमाणु प्रति वर्गणा घट रही है। जैसे हमने मान लेते हैं, हमने 100 विभाग प्रतिच्छेद माना है और मान लेते हैं यहाँ 100,000 परमाणु है, प्रति वर्गणा घटते 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 जब वहाँ 50,000 हो जाएंगे, नंबर ऑफ परमाणु 50,000 हो जाएगी, वहां तो अविभाग प्रतिच्छेद कितना ही मान हो सकता है कि 10 गुना भी बढ़ा, क्योंकि 10 स्पर्धकों की एक गुणहानि हो सकती है। यहाँ तो अनंत में ही सब व्यवहार चलता है। ख्याल में आई इतनी बातें? दूसरी बात हमने देखी थी, ये जो स्पर्धक है अनंत, नहीं वो बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ निषेकों में नहीं, वर्गणा की बात चल रही। प्रति निषेक में ही हो, ये निषेक रचना अलग बात है, इसको भूल जाओ। यहाँ जो हम बात करेंगे वो वर्गणा की है। हाँ, निचला होल है उसमें बहुत सारी वर्गणाएं हैं, अनंत वर्गणाएं हैं। अनुभाग मिनिमम है, नीचे के स्पर्धक के नीचे की वर्गणा में अनुभाग मिनिमम और नंबर ऑफ परमाणु मैक्सिमम, फल देने की शक्ति कम। और हमने देखा ना ग्रुप ऑफ परमाणु है, अभी मैंने बताया ना 100 अविभाग प्रतिच्छेद वाले 100,000 परमाणु होगी उसमें, जत्था ज्यादा है। अब जो दूसरी वर्गणा है उसमें 101 है, परंतु हो सकता है कि उसमें तो 500 कम है परमाणु, लाख में से 500 गए वहां पर। तो हर वर्गणा के प्रति वो घटते चले जाएंगे, प्रति वर्गणा वो घटते चले जाएंगे। जहाँ वो आधी हो जाएगी जिस वर्गना में, वहां तक के जो सारी वर्गनाएं और स्पर्धक उसको कहेंगे एक गुणहानि में इतने स्पर्धक और वर्गना है।
प्रश्न ऐसा है कि 70 कोड़ा कोड़ी किसी ने मिथ्यात्व बांधा है,
हाँ।
तो उसके 7000 वर्ष के बाद पहले समय में जो अनुभाग होगा और जो 70 कोड़ा कोड़ी का आखिर का जो समय है उसका जो अनुभाग होगा,
हाँ।
वो सबसे टॉप मतलब अधिक होगा,
नहीं है
वही तो मैं,
क्योंकि प्रत्येक कौन पूछ रहे हैं
अपनी भानुबेन,
क्या पूछा आपने
भानुबेन, यही कहना था ना आपका,
ऊपर यानी ऊपर कहाँ, निषेक में ऊपर के स्पर्धक में ऊपर, निषेक की मैंने पहले बात की, अभी निषेक को भूल जाओ, हर निषेक में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनेक स्पर्धक हो गए, हर निषेक में निषेकों को आड़ा करो और उसके ऊपर की ओर हम देखेंगे, इसीलिए ये स्थिति नहीं बताते हैं, यहाँ स्थिति की बात नहीं चल रही, अनुभाग की ही अकेली बात चल रही है, ये जो उत्कृष्ट अनुभाग है उसका उदय कभी भी हो सकता है, हो सकता है कि पहले निषेक में उत्कृष्ट का उदय चल रहा है, अब यहाँ तो हम हर समय स्थिति घटती है कहेंगे, परंतु अनुभाग के लिए हर समय घटेगा ही ये बात नहीं है, किसी निषेक के अभी ये इसकी सत्ता बनी रहे, और हो सकता है इसका तीव्र अनुभाग का उत्कृष्ट अनुभाग है, उसका उदय कभी भी हो सकता है, ये उदय रूप जब आएगी, ऐसा नहीं कि सभी मंद अनुभाग वाले पहले चले जाते और बाद में तीव्र रहते, ऐसा नहीं है, यहाँ स्थिति के साथ पहले मैंने बताया स्थिति को यहाँ बिल्कुल भूल जाओ, अभी मात्र अनुभाग की बात करना है, निषेकों की कितनी स्थिति है उसके अनुसार अनुभाग की बात यहाँ नहीं हो रही है, वो अन्यत्र कहीं जहाँ होगी क्षपणा आदि में, कि हर निषेक में वो अनुभाग घटता चला जाता है और अंत में सबसे जघन्य अनुभाग होगा, वो बात वो तो बाद में आएगी, वो प्रकरण अलग है, अभी कितनी स्थिति बाकी है उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसका अनुभाग बढ़ता है क्या घटता है उसके लिए अभी तो हम विस्तार से उसके बारे में चर्चा चलेगी यहाँ पर, ये तो हमें अभी विषय परिचय ले रहे हैं, हमें टर्मिनोलॉजी क्या है उसको देखना है, ये जो अनंत स्पर्धक हमने देखे उसमें हमने चार भाग किए थे, ये घाती कर्म है पहले बताया, और घाती कर्मों के अनुभाग वाले जो स्पर्धक है उसको चार नाम दे के समझाते हैं, नीचे जघन्य अनुभाग वाले, लता भाग वाले, फिर दारू भाग वाले, अस्थि भाग वाले और शैल भाग वाले, इसकी विस्तार से चर्चा की थी, उसी को शैल भाग वालों को चतुस्थानिक कहेंगे, अस्थि वालों को त्रिस्थानिक कहेंगे, दारू वाले जो है वे द्विस्थानिक कहेंगे और लता वाले वो एक स्थानिक कहेंगे, उसका भी हमने चार्ट देखा था, अभी हम 8 पृष्ठ पर आते हैं, ये प्रस्तावना का 8वां पृष्ठ, सभी अनुभागों के स्पर्धक तो उसको सभी पॉसिबिलिटीज उसको सर्व विभक्ति कहे, सभी नहीं हो तो नो सर्व कहा, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जो मैक्सिमम है उसको उत्कृष्ट कहते हैं, जो मैक्सिमम नहीं है उसके बिना अन्य सभी जघन्य से लेकर सभी अनुत्कृष्ट ही कहलाएंगे, जो मिनिमम पॉसिबल है उसको जघन्य कहेंगे, और जघन्य के अलावा इतने सारे उत्कृष्ट ऊपर के सभी जो कुछ है वो सारे अजघन्य कहलाएंगे, सादि अनादि ध्रुव अध्रुव में हमने देखा था कि सादि किसको कहना, जैसे उत्कृष्ट है तो हर समय तो अनादि से उत्कृष्ट 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 नहीं था, उत्कृष्ट कभी कभी होता है, और जब उत्कृष्ट है तब अनुत्कृष्ट नहीं है, जब अनुत्कृष्ट है तब उत्कृष्ट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, वो सादी है, जघन्य भी है वो भी सादी है, परंतु अजघन्य जो है उसको क्या कहेंगे, अनादि से है, ख्याल में आती ना बात, जघन्य कब होता है, अभी मिथ्यात्व की बात करेंगे, मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग कब होगा, अब मिथ्यात्व को छोड़ो, अन्य जो क्षपणा वाले, अन्य क्षपणा में भी नहीं होगा वो तो बाद में बताएंगे, हाँ यानी मिथ्यात्व की बात छोड़ो, मोहनी की सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय में लोभ का सबसे जघन्य अनुभाग है, तो मोहनी इन जनरल हम मूल प्रकृति की बात करेंगे, तो उसका जघन्य अनुभाग वहां पाया जाएगा, परंतु वो तो क्षपक श्रेणी में अंत समय में, तो उसको तो आदि है, अनादि से कभी नहीं हुआ था तो वो सादि कहेंगे, परंतु अजघन्य अनादि से हो ही रहे इस तरह से उसको अनादि कहना। अब यहां हम स्वामित्व देख रहे थे कल से, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, किसका स्वामित्व, उत्कृष्ट अनुभाग का धारक कौन सा जीव होगा, अनुत्कृष्ट का कौन होगा, जघन्य वाला कौन होगा, जघन्य का कौन होगा, ये हम फिर यहां पढ़ेंगे स्वामित्व 8 पृष्ठ पर। तो स्वामित्व दो प्रकार का है, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का स्वामित्व और जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामित्व। मोहनी का उत्कृष्ट अनुभाग बंध, ये बंध के समय में उसका उत्कृष्ट अनुभाग सत्ता में पाया जाएगा, तो उत्कृष्ट अनुभाग बंध संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव करता है, इसलिए वह तो उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का स्वामी है ही, साथ ही उसका घात हुए बिना विशुद्धि के कारण अनुभाग भी, जैसे हमने देखा ना स्थितियां घटती थी स्थिति कांड घात, वैसे अनुभागों में भी घटना होता है, तो घात किए बिना यानी उतने ही अनुभाग की सत्ता के साथ ऐसे जीव के एकेंद्रिय आदि अन्य पर्यायों में मरकर उत्पन्न होने पर एकेंद्रिय आदि अन्य जीव भी मोनी के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति के स्वामी हैं। निषेकों में तो हम अंतर्मूर्त घटते थे ऐसा दे लिया था, परंतु ये तो अंदर पड़ा है अनुभाग, और अनुभाग कांडक घात किए बिना वहां गए हैं, तो वहां उसकी सत्ता में भी उत्कृष्ट अनुभाग हो सकता है। अभी उसके लिए जो अपवाद है, मात्र भोग भूमि के तिर्यंच और मनुष्य तथा आनतादि के देव उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति के स्वामी नहीं होते, क्योंकि एक तो उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों की इनमें उत्पत्ति नहीं होती, दूसरे इन जीवों के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध नहीं होता। सामान्य से मोहनी का जघन्य अनुभाग क्षपक श्रेणी में प्राप्त होता है, इसलिए अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्राय क्षपक जीव जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामी है। ये मूल कर्म की अपेक्षा से बात की मोहनी इंजन्द्र। मोहनी के अवांतर भेदों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का स्वामी मोहनीय सामान्य की अपेक्षा जो स्वामित्व कहा है उसके ही समान है, यानी जो उत्कृष्ट बंध कर रहा है उसकी बात है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त च, तथा सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का स्वामी उनकी सत्ता वाले सब जीव है। क्या कहा, स्थिति में हम क्या कहते थे, सम्यक्त्व प्राप्ति का पहला समय है तब स्थिति ज्यादा है, बाद में हर समय एक एक निषेक घटता है। अब जिसके पास वो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग है, तो जिनके पास सत्ता है वो सब स्वामी है, इसका अर्थ क्या है, एक भी निषेक बाकी है तो भी उत्कृष्ट अनुभाग पड़ा है उसमें, और सभी निषेक बाकी है तो भी उत्कृष्ट अनुभाग सत्ता में पड़ा है, अनुभाग की बात चल रही है, स्थिति की बात नहीं। अब स्थिति को भूल जाओ, मैंने बार बार कहा हाँ, जिनके सत्ता है, क्योंकि प्रत्येक निषेक में अनेक परमाणु है, प्रत्येक में अनुभाग भी अलग अलग बना पड़ेगा, इसकी और चर्चा और विस्तार तो हम आगे पढ़ेंगे, जब विस्तार से तब उस ख्याल में आएगी बात, यहाँ तो केवल परिचय दे रहे हैं, और उसके जो रीजनिंग हो तो आगे चर्चा समाधान होगी तभी होगा। अभी क्या पढ़ा हमने, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की मिला, जहां कल हम रुके थे वो लास्ट सेंटेंस, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का स्वामी उनकी सत्ता वाले सब जीव है, यानी कितने भी निषेक क्यों न हो, उद्वेलना करने वाले हो या सम्यक दृष्टि हो, हाँ उनकी सत्ता वाले सब जीव कहे। मात्र दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला जीव उत्कृष्ट अनुभाग का घात करने के बाद उसका स्वामी नहीं है, क्योंकि दर्शन मोहनी की क्षपणा में अनुभाग कांडक घात भी होते हैं, तब वो उसका स्वामी नहीं कहलाएगा उत्कृष्ट का, जितने सत्ता में है उसका अनुभाग का कांडक घात होगा। तथा मिथ्यात्व की जघन्य, यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था, तथा मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामी, ऐसा नहीं कहा कि क्षपणा के अंत समय में है, क्या लिखा है, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव होता है। देखो इसमें अभी बहुत सारी नई नई बातें समझ में आने वाली है। क्या कहा, मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामी सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव होता है, क्योंकि मिथ्यात्व के अनुभाग का घात होकर सबसे जघन्य अनुभाग इसी के शेष रहता है, और वह घात किए गए उक्त अनुभाग के साथ अन्य एकेंद्रियों में वह द्विंद्रिय आदि में उत्पन्न होकर जब तक उसे नहीं बढ़ाता है तब तक ये जीव भी मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति के स्वामी होते हैं। कौन कहा, जैसे हमने स्थिति में देखा था, उत्कृष्ट स्थिति वाला जो एकेंद्रिय में जाता है तो उसके भी उत्कृष्ट स्थिति, अब यह अनुभाग की बात है, जिसने ये अनुभाग जघन्य में जघन्य किया है, ऐसा जो अन्य एकेंद्रियों में उत्पन्न हुआ है, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त के जघन्य अनुभाग है, ऐसा जीव अभी अन्य पर्याय में उत्पन्न हुआ है, तब वो बढ़कर अनुभाग नहीं बांधता है, तब तक वो इतना ही रहेगा। हाँ, अभी नेक्स्ट समय में अभी संगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ तो उसके योग्य अनुभाग का बंध होगा, तो उसकी सत्ता में वो अनुभाग बढ़ जाएगा। एकेंद्रियों में से एकेंद्रियों में गया तो भी सूक्ष्म निगोद की अपेक्षा अन्य एकेंद्रियों में अनुभाग ज्यादा होगा। देखो क्या कहा, उक्त अनुभाग के साथ, नीचे से तीन तीन छह सातवीं आठवीं लाइन है ना, उक्त अनुभाग के साथ अन्य एकेंद्रियों में व द्विंद्रिय आदि में यानी पंचेंद्रिय तक उत्पन्न होकर जब तक उसे नहीं बढ़ाता है, वो जब तक वो तो बताएंगे अभी किस समय बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, हाँ, तब तक ये जीव भी मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति के स्वामी होते हैं। देव नारकी और असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यंच और मनुष्य, उनमें तो ये जीव उत्पन्न नहीं होंगे, निगोद में से मनुष्य में तो आ सकता है परंतु भोगभ में नहीं जा सकता, ना ही देव में जाता है कोई, ना ही नारकियों में जाता है। तो देव नारकी और असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यंच और मनुष्य जघन्य अनुभाग विभक्ति के स्वामी नहीं होते। देखो क्षपणा वाला भी नहीं लिया है इसमें, ख्याल में है ना, सबसे जघन्य ये सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त को, क्योंकि इनमें सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवों की मरकर उत्पत्ति संभव नहीं है। इसी प्रकार मध्य की आठ कषायों की जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामित्व जानना चाहिए। अब ये क्यों है क्या है उसका समाधान तो मूल पुस्तक में ही, जो विषय जब आएगा तब होगा। सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामी दर्शन मुनि की क्षपणा करने वाला अंतिम समयवर्ती क्षपक जीव होता है, जब उसकी सम्यक प्रकृति का अंतिम कृतकृत्य वेदक के बाद अंतिम समय, एक निषेक बाकी है सम्यक्त्व का, क्योंकि क्षपणा के काल में अनुभाग कांडक घात भी होते चले जाते हैं, और वहां अंतिम जो निषेक बाकी है उसमें मिनिमम पॉसिबल अनुभाग होगा, क्योंकि नेक्स्ट समय में क्षायिक समय दृष्टि होने जा रहा है ना, तो वहां है तो सम्यक प्रकृति का उदय, परंतु उसका अनुभाग कितना मंद 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 होते गया है। सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामी दर्शन मुंह की क्षपणा के समय अपने यानी सम्यक मिथ्यात्व के अपने अंतिम अनुभाग कांडक का पतन करने वाला जीव होता है। वो कैसे पतन होते, क्या होते हैं, ये क्या है, सम्यक प्रकृति का क्षय उदय रूप से तो नहीं होता है, वो संक्रमित होते हैं, सम्यक मिथ्या तो है, वो सम्यक प्रकृति रूप से संक्रमित होते रहते हैं। तो अंतिम अनुभाग कांडक हो जाएगा, जैसे संक्रमण होता है ना, स्थितियों का भी होता है, अनुभाग का भी होता है, अनुभाग का भी घटेगा, अनुभाग घटकर उसका अपना अनुभाग भी जघन्य में जघन्य हो जाएगा। अनंतानुबंधी की जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामी विसंयोजना के बाद उससे संयुक्त होने के प्रथम समय में होता है। अभी हमें सोच कुछ बदलनी पड़ेगी, हा? हमें तो लगेगा ना विसंयोजना के अंतिम समय में होगा, जैसे उसका एक निषेक बाकी रहता है ऐसा, वो तब नहीं कहा, फिर से संयोजना, हाँ, क्योंकि विसंयोजना में तो उसने नष्ट किया है, अभी पहले समय में उसका अनुभाग अत्यंत मंद है, यानी जघन्य में जघन्य है। ये सारी बातें नहीं अपने लिए। यद्यपि इस समय शेष कषायों का अनुभाग अनंतानुबंधी रूप से संक्रांत होता है, फिर भी वह उस समय बंधने वाले अनुभाग रूप परिणम जाता है। क्या कहते हैं, अन्य कषायों में अनुभाग ज्यादा है, अनंतानुबंधी था ही नहीं, अब उस समय संयोजना होती है तो नया बंध भी होता है, और जो हमने अन्य कषाय रूप हुआ था वो सारा अनंतानुबंधी रूप से भी परमाणु में संक्रमण होता है। तो होता है, परंतु उसका अनुभाग किस रूप में होगा, तो जैसा वहां बंध हो रहा है उतना ही अनुभाग का बंध हो रहा है। ऐसे नहीं कि बंध मंद हो रहा है और अनुभाग जो संक्रमण की अपेक्षा अनुभाग ज्यादा हो, ऐसा वहां नहीं है। इसलिए उसके अन्य कषाय जो है वो इसमें संक्रमित हो रहे हैं, फिर भी उनका अनुभाग जो संक्रमण के बाद जो अनुभाग है वो जितना बंधने से हो रहा है उतना ही है, वो मिनिमम है, वो जघन्य है। इसलिए वह अनुभाग सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त के अनुभाग से अनंत गुणाहीन होता है। अब यह सब अनंत गुणा में बात चलेगी, अनुभाग में यही कारण है कि अनंतानुबंधी चतुष्क के जघन्य अनुभाग का स्वामित्व सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव को न देकर अनंतानुबंधी के विसंयोजन के बाद पुनः संयोजना होने वाले जीव को संयोजना होने के प्रथम समय में दिया है। पहला समय अभी है। संज्वलन क्रोध मान माया लोभ और तीन वेदों का जघन्य अनुभाग स्वोदय से ने अपने रूप से जो उदय चल रहा है, संज्वलन क्रोध अपने रूप से उदय होकर फिर मिट जाता है, फिर वो अन्य प्रकृति रूप संक्रमित होता है, इसको कहते हैं स्वोदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के अपनी अपनी क्षपना के अंतिम समय में प्राप्त होता है, क्योंकि क्षपणा के काल में अनुभाग कांडक घात भी होते रहते हैं, सत्ता में पड़े हुए अनुभाग घटते चले जाते हैं कांडकों में। अभी आगे चलकर बात आएगी, एक एक स्थिति कांडक घात होता है ना, उसके लिए अंतर्मूर्त लगता है, उतने काल में हजारों बार अनुभाग कांडक घात होते हैं और उसका अनुभाग अनंत गुना घटते चला जाता है। हाँ, देखो सपना के अंतिम समय में प्राप्त होता है, इसलिए उस अवस्था विशिष्ट जीव उस अवस्था के चाहिए इसलिए उस अवस्था के विशिष्ट जीव इनकी जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामी है। उस अवस्था वाला या का करो के ने सिंगुलर है ना, वो एक वचन है। उस अवस्था का विशिष्ट जीव इनकी जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामी है तथा 6-9 कषायों की जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामी भी उनकी अंतिम फाली का पतन करने वाला क्षपक जीव होता है। यहाँ अंतिम फाली का पतन जब कहते हैं तो वो कुछ एक समय वाली नहीं है, वो सारा संक्रमित होता है ना, बहुत सारे निषेक है, फिर भी उनमें जघन्य अनुभाग का स्वामी ऐसा कहेंगे उस समय उसको। इसलिए पहले कहा ना, निषेक कितने उस पर मत जाना, वो अनुभाग कितना है वो जब जैसे हम शास्त्र के द्वारा जानेंगे, थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो हमें आदत हो जाएगी पहला वाला, क्योंकि स्थिति विभक्ति बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं ना। अंतिम फाली का पतन, अंतिम फाली पर अनुभाग कांडक की अंतिम फाली, अभी निषेक की अंतिम फाली मत सोचो। हाँ नहीं, क्योंकि उसके बाद उसके अनुभागों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फाली रूप से वो संक्रमित होता है तो ये अंतिम फाली लेना। उदय तो है ही नहीं है जब नौकषायों का होता है, तो पुरुष वेद रूप से संक्रमित हो जाते, वो संक्रमित होने की अंतिम फाली लेना उसमें। यह स्वामित्व का विचार गति आदि मार्गणाओं का आश्रय लिए बिना किया है। गति आदि मार्गणाओं में जहाँ ओघ प्ररूपणा संभव है वहाँ ओघ के समान जानना चाहिए, अन्यत्र अन्य विशेषताओं को जानकर घटित कर लेना चाहिए। ये तो आगे चलकर सब बताया ही होगा उन्होंने। उदाहरणार्थ नरक में और देवों में असंगी जीव मरकर उत्पन्न होते हैं, इसलिए वहां उत्पन्न हुए हतसमुत्पत्तिक कर्म वाले, हतसमुत्पत्तिक कर्म है जिन्होंने अपनी सत्ता असंगी के योग्य कर ली है, ऐसा जी। असंगी में अनुभाग और निषेक दोनों, स्थिति और अनुभाग दोनों अधिक भी हो सकते हैं, असंगी के योग्य भी हो सकते हैं, क्योंकि जो संगी पंचेंद्रियों में से असंगी में गया है, अब उसने वहां एक ही भव किया है और फिर वो अन्यत्र उत्पन्न हुआ, तो उसके अनुभाग और जो स्थिति है वो संगी में से थोड़ा कम हुआ होगा, परंतु यहाँ ऐसा जीव है लिया है, उसने असंगी में रहते हुए उसका घात कर दिया है अनुभाग का भी, उसको हत समुत्पत्ति कहते, हत यानी घात। ऐसे जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों के जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामित्व कहा है, यानी नरकों में जघन्य किसके होगी, तो जो असंगी में असंगी के योग्य अनुभाग लेकर यहाँ आया है उसके यहाँ जघन्य होगी, नारकी होते हुए भी देव होते हुए भी। सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्वामित्व पूर्ववत है, क्या देखा था याद है, सम्यक्त्व की जघन्य कब होती है, हाँ कृतकृत्य वेदक का अंतिम समय, वो तो चारों गति में जा सकता है जी कृतकृत्य वेदक वाला, तो वहां जाकर उसके वो अंतिम समय प्राप्त होगा तो जघन्य अनुभाग होगा। सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य स्वामित्व वहां संभव नहीं, हाँ क्योंकि मनुष्य एक क्षपणा करता है, क्योंकि क्षपणा को छोड़कर अन्यत्र उसका अनुभाग कांडक घात नहीं होता। अनंतानुबंधी का जघन्य स्वामित्व भी पूर्ववत है, कब ये देखा था, संयोजना का पहला समय, हाँ संयोजना उसी को कही ना, विसंयोजना के बाद ही होगी संयोजना, तो जिसने विसंयोजना की है और वो जो मिथ्यात्व में आया है, अपनी अपनी विशेषता को जानकर इसी प्रकार अन्यत्र भी स्वामित्व घटित कर लेना चाहिए, अन्यत्र ने अन्य मार्गणाओं में वो बताएंगे आगे। अब काल ने एक जीव की अपेक्षा काल घटित करेंगे, काल का अर्थ होता है यहाँ उत्कृष्ट 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 लगातार रहे तो कितना काल एक जीव रह सकता है, अनुत्कृष्ट रहे तो कितना काल रहेगा, और जघन्य कितने काल रहेगा, जघन्य कितना काल रहेगा, उसको काल कहेंगे। सामान्य से मुनि के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि इसके उत्कृष्ट अनुभाग का बंद होने के बाद उसका अंतर्मूर्त में नियम से घात हो जाता है। अभी स्थिति जैसे एक एक निषेक से गल जाएगी वैसा मत सोचो, अब यहाँ अनुभाग तो बंधा है तो अनुभाग उत्कृष्ट बंद किया है तो अंतर्मूर्त तक तो उत्कृष्ट रहेगा, उसके बाद नियम से घात होगा, इसलिए जगन ने भी काल और उत्कृष्ट भी काल अंतर्मूर्त कहा। इसके अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि उसने अनुत्कृष्ट किया और फिर उत्कृष्ट का बंध किया, क्योंकि अनुभाग के अनुत्कृष्ट होने पर बंध द्वारा उसके उत्कृष्ट होने में कम से कम अंतर्मुहूर्त काल लगता है। और उत्कृष्ट काल, अब ये जघन्य काल कितना होता है, अनुत्कृष्ट का जघन्य काल। उत्कृष्ट का बंध कौन करता है, हमने देखा था संगी पंचेंद्रिय। तो जिस संगी पंचेंद्रिय ने उत्कृष्ट बंध किया है और मरकर गया एकेंद्रिय आदि पर्याय में, कितने काल तक रहेगा, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, तब तक अनुत्कृष्ट रहेगा। तो इसीलिए कहते अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल। अनुत्कृष्ट तो अनुभाग की अपेक्षा, वो लगातार लंबा काल चलता रहे, मैक्सिमम काल कितना होगा, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण, क्योंकि एकेंद्रियों में उक्त काल तक परिभ्रमण करने पर वहां उत्कृष्ट अनुभाग की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि वो जीवों के ऐसे परिणाम है उत्कृष्ट अनुभाग नहीं बांध सकते। हमें तो ऐसा कहते हैं ना, निगोद में चला जाता है तो मिथ्या तो ज्यादा है, ऐसा नहीं है, अनुभाग भी कम है, स्थिति भी कम बांध रहा है, फिर भी उसी पर्याय के योग्य बंध करता है वहां पर। इसी प्रकार मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों का काल पूर्वोक्त प्रकार से गठित कर लेना चाहिए। उत्कृष्ट की बात है ना, वो भी एक इंद्रियों में चला जाएगा तो उसका भी अनुत्कृष्ट रहेगा लंबे काल तक, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन इतने काल तक। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। हमने उत्कृष्ट किसको होती है देखा था, जिसको उसकी सत्ता है वो सभी को। तो यहाँ अंतर्मूर्त में कैसी सत्ता नष्ट हो सकती है, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता होने पर अंतर्मूर्त काल के भीतर उनकी क्षपना संभव है। सत्ता होने पर कब होगी सत्ता, जिसकी सत्ता नहीं थी ऐसे जिन्होंने औपशमिक समय तो प्राप्त किया, अंतर्मूर्त में वेदक हुआ, अंतर्मूर्त में क्षपणा कर गए। उत्कृष्ट स्थिति वाला है, स्थिति से कुछ मतलब नहीं है, अभी यहां तो अनुभाग की बात करना। हाँ उत्कृष्ट स्थिति है तो उत्कृष्ट स्थिति वो भी करेगा ना, क्षाई करेगा वो, हाँ उसके कांटक घात वगैरह हो गया स्थिति की घात। परंतु जब वेदक समय दृष्टि है, उत्कृष्ट स्थिति है, तो पहले वो कांडक घात भी करेगी ना, वहां पर स्थिति कांडक घात भी वहां चलेगे, अनुभाग कांडक भी होगे, हाँ हो सकता है। और उत्कृष्ट काल साधिक 266 सागर है, तो 266 सागर तक उसकी उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति रहती है, यानी निशे कितने गलेंगे फिर भी अनुभाग उतना का उतना रहता है, ख्याल में ना। इसलिए निषेक के अनुसार उसका अनुभाग का प्रोपोर्शन मत सोचो अभी, उत्कृष्ट अनुभाग की बात, क्योंकि इतने काल तक इनकी सत्ता बनी रहने में कोई बाधा नहीं आती। यहां साधिक से कितना काल लिया जाए इस विषय में, विषय करो विपय हुआ, विषय में आचार्यों में मतभेद है, मतभेद है, इसलिए मूल ग्रंथ पृष्ठ 188 देखिए, जब आएगा तब देखेंगे हम। इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल, अभी उत्कृष्ट की बात देखी हमने, अभी अनुत्कृष्ट की बात है। अनुत्कृष्ट विभक्ति अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि इनकी क्षपणा के समय, ये सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की बात चल रही है, इनकी क्षपणा के समय प्रथम कांडक घात से लेकर इनकी क्षपणा में इतना काल अवश्य लगता है। अनुत्कृष्ट कब होगी, क्षपणा में जब कांडक घात शुरू हो जाएगी, अनुभाग कांडक घात, तब से अनुत्कृष्ट कहेंगे, तब तक क्या थी, उत्कृष्ट थी। जिसको सत्ता है वो सब उत्कृष्ट कहे। अब जिसने एक सपना प्रारंभ की है और उसने अनुभाग कांडक भी शुरू किए इनमें, तो उसके अनुत्कृष्ट शुरू हुई ना, उत्कृष्ट अभी नहीं रही, तो अनुत्कृष्ट 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 ही रहेगी। अभी जघन्य भी हो जाएगी तो उसको अनुत्कृष्ट ही कहेंगे, तो जब तक उसकी सपना पूरी नहीं होती तब तक उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। यह अनुत्कृष्ट के बाद जघन्य को नहीं लेना, अनुत्कृष्ट जघन्य भी अनुत्कृष्ट का एक भेद है। उत्कृष्ट किसके, जिसके सत्ता थी, जिस समय तो प्राप्त करने के पहले समय से लेकर उसके उत्कृष्ट की सत्ता है वहां पर। जब वो कांडघात शुरू करेगा क्षपणा में तब वो अनुत्कृष्ट हो जाएगी, और जितना क्षपणा में काल लगता है वो सब उसका काल कहलाएगा। मोहिनी के जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात हो गई। अभी जघन्य और अजघन्य ऐसा ही सोचना है, मिनिमम पॉसिबल, और जो अन्य सब है उत्कृष्ट वाले वो सब अजघन्य कहलाएंगे। तो जघन्य में जघन्य कब है, एक समय, क्योंकि क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में इसकी प्राप्ति होती है। वहां तो हमने देखा था एक एक निशे गलेगा आवली प्रमाण के बाद, फिर भी एक एक निषेक भी गलेगा, स्थिति तो एक एक समय से कम होगी और अनुभाग प्रति समय घटेगा, इसलिए अंतिम समय लिया। हाँ, जघन्य में जघन्य अनुभाग भी घट रहा है, लास्ट में जघन्य होगा, तथा इसके पहले वह अजघन्य है। एक समय छोड़कर अनादि से अजघन्य था, इसलिए अजघन्य अनुभाग को अभव्यों की अपेक्षा अनादि अनंत क्यों अनादि अनंत कहेंगे? अरे वो कभी जघन्य होने वाला ही नहीं है, वो तो सम्यक को भी नहीं प्राप्त करेगा, तो क्षपणा का सवाल नहीं। और भव्यों की अपेक्षा अनादि शांत, इस तरह दो प्रकार का है। उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। फिर याद करना है, मिथ्यात्व का जघन्य क्षपणा में नहीं होता, कब होता है? सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त, क्योंकि हत समुत्पत्ति कर्म के अवस्थान का इतना काल, अवस्थान यानी उतना का उतना रहना, यानी जब उसने जघन्य बंद किया है अनुभाग का तो लगातार उतना ही जघन्य रहे, ये अंतर्मूर्त ही पॉसिबल है। उसके बाद वो नियम से उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करेगा ही, फिर उत्कृष्ट भी लगातार अंतर्मूर्त रह सकता है, फिर वो तो वेरिएशन होगा उसका। यहाँ तो हम जघन्य की बात कर रहे हैं। इसके अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि वो जघन्य का भी अंतर्मूर्त का है मिनिमम हो, क्योंकि अभी हमने देखा ना, जिसने सूक्ष्म निगोद ने जघन्य कर दिया है, अब उसने उत्कृष्ट अनुभाग बांधा, वो भी लगातार अंतर्मूर्त रह सकता है, और फिर उसने जघन्य किया तो अजघन्य का एक अंतर्मूर्त हुआ। क्योंकि जघन्य अनुभाग सत्कर्म वाला जीव, यानी जिसकी सत्ता में जघन्य अनुभाग है ऐसा जीव, अजघन्य अनुभाग को प्राप्त होकर कैसे होगा? बंद के द्वारा। कम से कम अंतर्मूर्त काल तक इस अनुभाग के साथ अवश्य ही रहता है। जो बंद करते हैं तो उसका घात होने में अंतर्मूर्त में, हमने देखा था उसका उत्कृष्ट और जघन्य भी काल अंतर्मूर्त ही रहता है, तो अजघन्य का अंतर्मूर्त रहेगा। तथा उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। किसका? अजघन्य का। आप कोई कह सकते हैं असंख्यात लोक क्यों कहा? एक इंद्रिय का काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, देखो जघन्य किसके हैं? सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त को, बराबर। अभी अजघन्य के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अन्य पर्याय में भेज दो, अन्य पर्याय ने बादर में रहने का काल गिनो, उसको बादरे केंद्रियों में, बादरे केंद्रियों का उत्कृष्ट काल है असंख्यात लोक। असंख्यात लोक में जितने प्रदेश है उतने समय, असंख्यात लोग जब काल को कहते हैं, जैसे हमने अंगुल का असंख्यातवा भाग देखा था, अंगुल वो तो प्रदेश का प्रमाण क्षेत्र है, उसके असंख्यातवे भाग में जितने प्रदेश है उतने समयों में अगर हम काल गिनेंगे तो वो कितने होते हैं, असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। तो अंगुल में कितने हो गए असंख्यात गुणे, होगी ना, अंगुल इतना है और लोक कितना बड़ा है, असंख्यात लोक कितना बड़ा होगा और उसमें प्रदेश कितने होंगे और उस काल का प्रमाण कितना बड़ा होगा। उतने समय ये काल गिनने का तरीका है। तो यहाँ कहते उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि अनुभाग बंध अध्यवसाय परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण बताए। यह अलग कारण बताया कि उसने विशिष्ट अनुभाग बांधा, क्यों बांधा, विशिष्ट परिणाम से। अनुभाग बंध के लिए जो कारणभूत परिणाम है उसको कहते हैं अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। क्या कहा, जैसे विशिष्ट स्थिति बंधने के परिणामों को क्या कहते हैं, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान है तो कषाय, उस कषाय में भी स्थिति बंध के योग्य स्थान अलग कहेंगे और अनुभाग बंध के योग्य स्थान अलग कहेंगे। आपने शायद भाव परावर्तन में पहले सुना होगा तो उसमें ये चार बातें समझाई थी, स्थिति के स्थान, स्थिति बंध अध्यवसान के स्थान, अनुभाग बंध अध्यवसान के स्थान और योग स्थान। यहाँ किसकी बात चल रही, अनुभाग बंध अध्यवसान के स्थान, उसका अर्थ होता है अनुभाग का बंध का, अनुभाग क्यों बनता है, कषाय से बनता है। ये तो बहुत स्थूल कथन है, क्योंकि कषाय से स्थिति भी बनती है और अनुभाग भी बनता है। तो जिस विशिष्ट परिणाम से स्थिति का बंध हो रहा है ये स्थिति विशिष्ट स्थिति है एक समय, इसके लिए कारणभूत परिणाम कितने हो सकते हैं, अलग अलग असंख्यात लोक प्रमाण के कषायों के कारण उतनी ही स्थिति का बंध हो सकता है। एक विशिष्ट स्थिति, स्थिति की बात चल रही है। अब इसमें हमने ये असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग कषाय स्थान या स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान देखे। अब एक एक स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान है ना, इन्हें कषाय का विशिष्ट परिणाम, उसके लिए अपने अपने असंख्यात लोक प्रमाण, एक एक के लिए असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान होंगे, यानी उस कषाय के परिणाम में भी कितने वेरिएशंस होगी कि उससे अलग अलग अनुभाग का बंध हो सकता है। इतना ही लेना है यहाँ पर, किसी जीव ने विशिष्ट अनुभाग बांधने का एक परिणाम किया और अनुभाग बांधने के अन्य परिणाम कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण सभी जीवों की अपेक्षा लिए। अब वो सूक्ष्म निगोद जो जघन्य अनुभाग बांधने का उसका जो अपना परिणाम है उसको छोड़कर उसके उसी पर्याय में अन्य परिणाम या अन्य गतियों में अन्य पर्याय में गया तो इतने असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग भाव करके फिर वो उस भाव पर आया। वो भाव करने के लिए वो क्रम से करेगा ऐसा भी नहीं, कभी कभी इन्हीं भावों में उसका अलटना पलटना होगा और बाद में वो सेम भाव करेगा तो उसको कितना काल लग सकता है, तो असंख्यात लोक प्रमाण उत्कृष्ट काल, क्योंकि अनुभाग बंध अध्यवसाय अध्यवसान परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण बतलाए है, यानी वो विशिष्ट परिणाम नहीं किया और अन्य ही किया तो उसको इतना काल लगेगा। मिथ्यात्व के समान ही सम्यक मिथ्यात्व आठ कषाय और छह नौ कषायों के जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल घटित कर लेना चाहिए। अभी जैसे हमने मिथ्यात्व में देखा है वैसा ही। अभी जो हमने सूक्ष्म निगोद में देखा ना वैसा है। मात्र सम्यक मिथ्यात्व के अजघन्य अनुभाग का, सम्यक मिथ्यात्व का अजघन्य अनुभाग, मिथ्यात्व का अजघन्य कितने काल तक देखा हमने, असंख्यात लोक प्रमाण। और सम्यक मिथ्यात्व का अजघन्य कितना काल रहेगा, जब जघन्य नहीं होगा तब अजघन्य कहेंगे ना उसको। हाँ, अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त क्यों, सपना में इतना टाइम लगेगा, सपना में जघन्य हो जाएगा ना उसका। और उत्कृष्ट काल पल्ले के तीन असंख्यात विभाग अधिक दो छासर सागर प्रमाण, क्यों, सपना नहीं कर रहा है और उसकी सत्ता बनी है। ये कब पॉसिबल है कि सपना तो नहीं होती है और सत्ता बनी रहती है, तो सत्ता कब से शुरू हो गई, जब से सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है तो औपशमिक सम्यक तो होता है, तो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त हुआ, फिर औपशमिक सम्यक तो में से गिरकर मिथ्यात्व में आया, सत्ता तो बनी रही, कब तक बनी रहेगी, पल्ले के असंख्यात भाग काल में उद्वेलना पूरी होती है। तो एक बार पल्ले का असंख्यात, पहले उपशम सम्यक तो किया, पल्ले के असंख्यात भाग तक उद्वेलना करते गया, उद्वेलना पूरी नहीं की, पूरी करने के पहले फिर दोबारा उसने सम्यक तो प्राप्त किया, ये पूरा लेना है ना पल्ले का असंख्यात भाग, तो फिर उपशम सम्यक तो करेगा, फिर उपशम सम्यक तो हुआ, फिर गिर गया, या फिर अभी उसको वेदक सम्यक तो प्राप्त कराओ बीच में, क्यों, हमने वो लेना है ना दो छासर सागर भी, पल्ले के तीन असंख्यात विभाग अधिक दो छासर सागर प्रमाण है। तो अभी ये उपशम सम्यक तो में से वेदक सम्यक दृष्टि हुआ, वेदक सम्यक दृष्टि का काल कितना है, छासर सागर, एक अंतर्मूर्त में लिए सम्यक मिथ्यात्व में आया, सम्यक मिथ्यात्व में भी उसकी सत्ता तो बनी रही, फिर दोबारा छासर सागर यानी 132 सागर हो गए, सपना की नहीं, फिर मिथ्यात्व में आया और फिर वो पल्ले का असंख्यात भाग काल गया, यानी उसके दो बार पल्ले के असंख्यात भाग यहाँ प्राप्त करना है, फिर यहाँ बीच में वेदक सम्यक के 66 और 66 132 सागर प्राप्त करना है, और फिर लास्ट में जाकर फिर पल्ले का असंख्यात भाग काल। तो तीन बार पल्ले का असंख्यात भाग और दो छासर सागर, सम्यक्त्व के अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल भी सम्यक मिथ्यात्व के समान है। तीन बार उद्वेलना की उसने, पल्ले के तीन असंख्यात विभाग का अर्थ होता है पल्ले का असंख्यात विभाग तीन बार। हाँ, ये अटपटी भाषा है। सम्यक्त्व के अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल भी सम्यक मिथ्यात्व के समान है, उसमें भी ऐसे उद्वेलना इतनी बार हो जाएगी उसे। मात्र सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, सम्यक मिथ्यात्व से इसकी जो वेरिएशन जो है, क्योंकि इसकी क्षपणा के अंतिम समय में इसका जघन्य अनुभाग उपलब्ध होता है। इसी प्रकार अपने अपने स्वामित्व के अनुसार अनंत अनुबंधी चतुष्क, चार संज्वलन और तीन वेदों के जघन्य अनुभाग का काल एक समय घटित कर लेना चाहिए। अनंतानुबंधी का हमने देखा था संयोजना होते समय, विसंयोजना के बाद चार संज्वलन और तीन वेद अपने अपने उदय से श्रेणी चढ़ने वालों के, और उसका एक समय घटित होगा क्योंकि उदय रूप होता है ना वो, इसलिए एक समय घटित किया उसने। इनमें से अनंतानुबंधी के अजघन्य अनुभाग के अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत, ये तीन भंग प्राप्त होते हैं। जो जघन्य नहीं है, जघन्य कब है, संयोजना करने पर, और अजघन्य जब तक उसने संयोजना नहीं की तब तक। तो अनादि अनंत तो अभव्य को भी होगा, जिसने अभी सम्यक तो प्राप्त नहीं किया उसको भी होगा, और जिसने सम्यक तो भी प्राप्त किया विसंयोजना भी की है और उसने फिर किया ही नहीं संयोजना उसकी। संयोजना की ही नहीं उसने, हाँ उसके जगह अजगन नहीं हुआ, उसको जगन्य हुआ ही नहीं, ऐसा भी होगा ना। सपना ही कर दी उसने, संयोजना की ही नहीं उसने। तो अनादि शांत किसको कहेंगे? अनादि से अजगन्य है और संयोजना करने पर वो अजगन्य में से जगन्य हुआ, अजगन्य में से संयोजना करने पर अजगन्य में से जगन्य हुआ। हाँ, और सादी शांत कितने ही बार वो तो पल्ले के असंख्यात भाग भी संयोजना और संयोजना कर सकता है। जैसे प्रथम ऑप्शन सम्यक को कितनी बार कोई जीव अनादि काल से कितनी बार कर सकता है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन में, तो पल्ले के असंख्यात भाग बार कर सकता है, असंख्यात बार। तो ये विसंयोजना भी असंख्यात बार हो सकती है, तो वो सादी शांत काल कहेंगे। हमने देखा एक अंतर्मूर्त में दो बार विसंयोजना कर सकता है कोई जी, तो वो कितना है वो बाद में बताएंगे। यहाँ आगे लिखा है सादी शांत का जघन्य काल अंतर्मूर्त, यानी अंतर्मूर्त में दो बार विसंयोजना और संयोजना सब कर दी उसने, और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्यों अर्धपुद्गल? यानी जब उसने प्रथम बार ऑप्शन समय तो प्राप्त किया, विसंयोजना की, फिर संयोजना की, तो संयोजना की तो जघन्य हुआ, और उसके बाद अजघन्य चालू हो गया, फिर अंत में जाके अर्धपुद्गल परावर्तन कम यानी समाप्त होने को आया, तो फिर उसने वो सम्यक तो भी प्राप्त किया, विसंयोजना भी की, फिर संयोजना की, और फिर वो दोबारा सम्यक तो प्राप्त करके फिर क्षपणा करेगा, मोक्ष चला जाएगा। तो अर्धपुद्गल परावर्तन में कुछ कम, कारण स्पष्ट है। चार संज्वलन, तीन वेद और छह नौ कषायों के अजघन्य अनुभाग के दो भंग होते हैं, अनादि अनंत और अनादि शांत। इनमें सादी शांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो जघन्य कब होता है? क्षपणा के समय। तो एक बार जघन्य होने के बाद फिर अजघन्य हो और फिर जघन्य, ऐसा नहीं हो सकता। तो अनादि से चल रहा था भव्यों में, क्षपणा करने वालों में तो अंत हो जाएगा, तो अनादि शांत, और जो अभव्य है अनादि अनंत। तथा आठ कषायों के अजघन्य अनुभाग का काल मिथ्यात्व के समान है। जैसे वो निगोद में से अन्यत्र चला जाता है, इस प्रकार यह सामान्य से काल का विचार किया, गति आदि मार्गणाओं में अपनी अपनी विशेषता जानकर काल ले आना चाहिए, वो बाद में उसका विचार करेंगे। ये तो पूरी पुस्तक ही यहाँ बता रहे हैं क्या क्या है। हाँ, 23 सब। अब इसके बाद अंतर होगा। अंतर का क्या अर्थ है? अभी अजघन्य था, जघन्य किया और दोबारा अजघन्य हुआ, या उत्कृष्ट था, अनुत्कृष्ट किया, फिर उत्कृष्ट किया, उसका अंतर कहेंगे उसको। एक जीव की अपेक्षा, यहाँ एक जीव की अपेक्षा बात चले, क्योंकि अभी एक जीव की अपेक्षा समय तो देखा, एक जीव की अपेक्षा काल देखा, यहाँ एक जीव की अपेक्षा अंतर देखेंगे। देखो आपका प्रश्न है, ये पल्ले का असंख्यात्व भाग तीन बार क्यों लिया है? तो यहाँ ये अधिक से अधिक कितने टाइम तक उसकी सत्ता बनी रहती है? जब तक सत्ता है तब तक उसका वो उत्कृष्ट ही चलेगा, सपना नहीं किए ऐसे जी। तो आप कहेंगे तीन बार ही क्यों, ज्यादा ले लो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उतनी उसके मैक्सिमम लिमिट है। तो सत्ता कब तैयार हुई? सबसे पहले औपशमिक समय प्राप्त किया, अब वो मिथ्यात्व में आया और उद्वेलना के लिए पूरा काल पल्ले के असंख्यात्व भाग लगता है। अब उद्वेलना पूरी मत करो, उसका एक निषेक भी बाकी रखो ना। हाँ, और फिर औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया, औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया, फिर मिथ्यात्व में आया, फिर पल्ले का असंख्यात्व भाग लगा उसका। उद्वेलना कंप्लीट किए बिना और एक बार उसने औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया, और फिर उसने वेदक किया, वेदक किया तो वेदक के साथ 66 और 66 सागर रहा, क्षपणा नहीं की, उसके पहले ही नीचे वो तो मिथ्यात्व में आया, और फिर पल्ले के असंख्यात्व भाग में अभी तो उद्वेलना पूरी करे। नहीं, पल्ले के असंख्यात्व भाग फिर 132 लिखा था मैंने, 66 और 66, यानी यहाँ उपशम करेगा, फिर वेदक करेगा, वेदक में 132 सागर, वो तो एक अंतर्मूर्त सम्यक मिथ्यात्व के साथ वाला लेना। हाँ, दो इसके बाद वेदक के बाद फिर लाना है उसको नीचे पल्ले के असंख्यात्व भाग वहां पर, नहीं फिर वो उद्वेलना पूरी करेगा, अधिक से अधिक सत्ता इतने काल तक बनी रहती है उसे, फिर दोबारा कर सकता है, उद्वेलना पूरी होने के बाद फिर करेगा, यानी लगातार ऐसा नहीं चलता रहेगा बहुत काल तक। हाँ, तीन बार ही लिया उसे, ऐसा ही स्वभाव है। हाँ, मैक्सिमम हमको लेना है, हो सकता है एक बार ही करे, हमें उत्कृष्ट काल घटित करना है ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसके बाद वो पूरी उद्वेलना करेगा, कुछ काल रहेगा मिथ्यात्व में, फिर दोबारा उपशम करेगा, क्योंकि ऐसा उपशम सम्यक तो असंख्यात बार हो सकता है, परंतु लगातार ये ऐसे ऐसे ही असंख्यात काल तक नहीं चलेगा, उसकी सत्ता असंख्यात यानी असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक या इतने तो हो ही नहीं सकती, अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भी ऐसी लगातार सत्ता नहीं बनी रहेगी, ये बताना चाहते। हाँ, जीरो हो जाएगा फिर उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल चलेगा, बीच बीच में कभी कभी करेगा प्राप्त, कंटिन्यूस ऐसे होते ही रहेगा ऐसा नहीं होगा उसका, इसलिए तीन बार कहा। देखो अभी अंतर देखेंगे, एक जीव की अपेक्षा सामान्य से मोहनी के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, अभी हमने वो भी देखा था ना, उसका काल भी अंतर्मूर्त देखा था, उत्कृष्ट हुआ है, उत्कृष्ट करो क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का घात होकर अंतर्मूर्त में पुनः उसकी प्राप्ति संभव है, इसलिए जघन्य अंतर की बात की है, एक अंतर्मूर्त में फिर उत्कृष्ट का बंध हो सकता है, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल प्रमाण है, क्योंकि पंचेंद्रिय के एकेंद्रिय आदि पर्याय में इतने काल तक रहने पर उत्कृष्ट अनुभाग का इतना अंतर देखा जाता है, अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त प्रमाण है, जो उत्कृष्ट नहीं वो सब अनुत्कृष्ट, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, जो अनुत्कृष्ट का काल है वो उत्कृष्ट का अंतर कहेंगे, अभी हमने अनुत्कृष्ट का काल में देखा था संख्यात पुद्गल परिवर्तन, अब यहाँ उत्कृष्ट में अंतर में उसको लेना है। उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा, ये तो मूल प्रकृतियों में बताया, उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि घात द्वारा अनुत्कृष्ट अनुभाग होकर कम से कम अंतर्मूर्त काल में पुनः उसकी प्राप्ति संभव है, जैसे अभी हमने मोहनी इन जनरल की बात देखी, और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि कोई पंचेंद्रिय उत्कृष्ट अनुभाग का घात कर अधिक से अधिक इतने काल तक एकेंद्रियों में परिभ्रमण करने के बाद संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त होकर पुनः उसका बंध करता है, अनंतानुबंधी चतुष्क को छोड़कर इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। क्योंकि इनके उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बतलाया है। पहले मिथ्यात्व 16 कशा 9-9 कशा उनकी सब इन जनरल बात की थी, अब उसमें अनंतानुबंधी के अनुत्कृष्ट को छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें वो संयोजना वाली वगैरह वो बात सब उसमें घटित होती है। अनंतानुबंधी के अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2-66 सागर प्रमाण है। अनुत्कृष्ट का अंतर कैसे घटित किया? जब अनुत्कृष्ट जो उत्कृष्ट नहीं वो अनुत्कृष्ट, तो अन्यत्र अन्य कषायों के बारे में अनुत्कृष्ट का काल कैसे घटित होता है? अंतर्मूर्त तक अनुत्कृष्ट रहा फिर उत्कृष्ट किया, ऐसे होगा ना? अभी हमने देखा, या अभी हमने देखा था अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल कितना देखा था? अंतर अंतर अनुत्कृष्ट का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर दोनों अंतर्मूर्त बताए थे। हाँ, तो अनंतानुबंधी में क्या होगा? देखो, उत्कृष्ट था ना, पहले किसी ने उत्कृष्ट किया, अभी उसका जो अंतर घटित करना है, अनुत्कृष्ट का अंतर घटित करना है। हाँ, नहीं, उसने विसंयोजना कर दी, विसंयोजना कर दी तब वो अनुत्कृष्ट था, अब उसने अंतर कर दिया, विसंयोजना कर दी, अब वो विसंयोजना की स्टेट में रहा। उसने जब तक संयोजना करके फिर दोबारा संयोजना करेंगे तो जघन्य हो जाएगा, तो जघन्य वो अनुत्कृष्ट ही है। तो विसंयोजना की पोजीशन में वो कितने काल तक रह सकता है? 66 सागर, पूरे 66 सागर हो जाएगी तो क्षपणा हो जाएगी। तो यहाँ क्या कहा, अनंतानुबंधी के अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर। अब अनंतानुबंधी के विसंयोजना के साथ वो तीसरे में भी जा सकता है, इसलिए 2-66 सागर लिए। नहीं समझे? उसकी संयोजना कब होगी? या तो वो दूसरे गुणस्थान में जावे या पहले में जावे। तो जीव ने पहले विसंयोजना की, विसंयोजना यदि नहीं करता है तो उसका अनुत्कृष्ट चलता रहता है, उत्कृष्ट तो नहीं होगा क्योंकि सम्य दृष्टि है, अधिक बंध तो नहीं करेगा, उत्कृष्ट पहले किया भी होगा और जब सम्यक तो प्राप्त किया है, क्योंकि अंतर्मूर्त मिथ्या दृष्टि में भी अंतर्मूर्त रहता है उत्कृष्ट बाद, तो अनुभाग का घात तो होता ही, अनुत्कृष्ट हो ही जाता है। अब उसका अनुत्कृष्ट हुआ है और उसने सम्यक तो प्राप्त किया है, तो सम्यक दृष्टि रहा तो उसका अनुत्कृष्ट ही रहेगा कायम, परंतु उसने विसंयोजना कर दी यानी उसकी सत्ता में से ही नष्ट हुआ है, तो अनुत्कृष्ट में अंतर पड़ गया। जब तक सत्ता थी तब अनुत्कृष्ट था, अब उसमें अंतर पड़ गया, तो अंतर पड़ गया तो 66 सागर तक तो वेदक समय दृष्टि विसंयोजना वाला रहा, फिर विसंयोजना की ही अवस्था में तीसरे में आया, फिर अंतर्मूर्त के बाद फिर चौथे में गया और फिर 66 सागर रहा, क्षपणा किए बिना अभी वो मिथ्यात्व में आया। क्षपणा करता तो कायम। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व में उदय कहाँ होता है? सम्यक मिथ्यात्व में विसंयोजना की तीसरे गुणस्थान में या तो 24 की सत्ता होती है या 28 की होती है, दूसरे वाले को तो 28 की ही होती है, उसके बिना दूसरा गुणस्थान ही नहीं होगा। 24 वाला, तो विषम योजना के साथ वो उसके बाद तीसरे में आया, तो 66 सागर पूरे हुए, फिर चौथे में गया, फिर और 66 सागर पूरे होने में थोड़ा काल कम था, पूरा हो जाता तो वो तो सपना करता था, तो एक अंतर्मुहूर्त पहले वो मिथ्यात्व में आया, तब संयोजना हुई, तब जघन्य हुआ, तो जघन्य को भी अनुत्कृष्ट कहेंगे, यानी अनुत्कृष्ट का अंतर बीच में जब सत्ता ही नहीं थी तब अनुत्कृष्ट का अंतर हुआ था। और उत्कृष्ट के भी लिए ऐसा ही कहेंगे ना, उत्कृष्ट किया फिर अनुत्कृष्ट हुआ, फिर अनुत्कृष्ट के बाद विषय योजना भी कर दी और फिर जाके अनुत्कृष्ट किया, यानी संयोजना हुई और फिर उसने अंतर्मुहूर्त में बंद किया। देखो उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2-6 सागर बना, क्योंकि इसकी विषय योजना होकर इतने काल तक इसका अभाव रहता है, ये अभाव की अपेक्षा अंतर कहा है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर एक समय हमने देखा था ना, जब तक सत्ता है तब तक उत्कृष्ट अनुभाग रह सकता है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर एक समय कैसे होगा, सपना के बाद फिर हाँ? जब तक सत्ता है, कब तक सत्ता है, जब तक उद्वेलना पूरी नहीं होती तब तक सत्ता है, उद्वेलना जब उद्वेलना के अंत समय तक सत्ता है, एक समय के लिए उद्वेलना के रहित यानी वो बिना सत्ता वाला रह गया और फिर समय को प्राप्त किया, फिर सत्ता आ गई ना उपशम समय को प्राप्त करने, तो उसका उत्कृष्ट अनुभाग हो गया। फिर ख्याल में है नहीं बात, तो जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि पहले उद्वेलना करते समय तक तो उसके सत्ता थी तो उत्कृष्ट था, फिर उद्वेलना पूरी हुई अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक वो उद्वेलना किया हुआ ऐसा ही रहा और बाद में उसने समय को प्राप्त किया तो उसके फिर सत्ता आ गई यानी उत्कृष्ट हो गया, क्योंकि इनकी उद्वेलना होकर कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक उनका अभाव देखा जाता है, जब जब सद्भाव है तब तब वो उत्कृष्ट कहलाएगा। फिर इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर संभव नहीं है, क्योंकि अनुत्कृष्ट कब होता है, सपना में होता है, एक बार सपना शुरू हुई तो वो रिवर्सिबल नहीं होती है, क्योंकि उसकी प्राप्ति इनकी सपना के समय होती है, उद्वेलना के अंत समय तक उसका उत्कृष्ट अनुभाग बना रहता है। हाँ सत्ता है बोले समय दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो तो उत्कृष्ट है, एक्सेप्ट सपना शुरू करते ही उसका अनुत्कृष्ट हो जाता है। हाँ? देखो देखो आपका ऐसा प्रश्न है, यह अर्धपुद्गल परावर्तन उत्कृष्ट काल क्यों लिया, उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर में, तो अंतर कैसे घटित किया है, पहले में पहले उसकी सत्ता बनी, कब बनी, उपशम सम्यक्त्व, तो मोक्ष के कितने अधिक पहले वो हो सकता है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल, तो तभी उसने उपशम सम्यक तो प्राप्त किया, उपशम सम्यक तो प्राप्त करते ही सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग शुरू हो गया, अभी अर्लीएस्ट उसको उद्वेलना कराए ना तो अंतर्मुहूर्त में ही वो मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व में आया तो भी उत्कृष्ट अनुभाग है, उद्वेलना पूरी होने के लिए पल्ले का असंख्यात्व भाग चला गया, उद्वेलना पूरी होते ही अंतर शुरू हो गया, यानी जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल है उसमें से शुरू वाला वो पल्ले का असंख्यात्व भाग घटाना, अब अंत में जाकर अंत में जाकर उसने अंतिम भव, उसका मनुष्य भव प्राप्त हुआ है, उसी भव में मोक्ष जाने वाला है, और लेट में लेट उसने औपशमिक समय तो प्राप्त किया, तो वो बीच में कितना काल गया, कुछ कम अर्धपुतगल प्राप्त। उसके पश्चात वो औपशमिक समय में से वेदक हो जाएगा, क्षायिक करेगा, यानी वो संयम भी उसने औपशमिक के साथ ही किया, ऐसे हम समझेंगे। हमें बाद में भी मिनिमम टाइम रखना है, तो औपशमिक सम्यक तो और सातवां गुणस्थान प्राप्त किया, वेदक हुआ, क्षायिक हुआ, क्षपक श्रेणी चढ़ा, अंतर्मूर्त में मोक्ष गया, और इतना काल मिथ्यात्व में गया। अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं है, क्योंकि वो क्षपणा के समय होता है, एक बार श्री होती क्षपणा, तो अनुत्कृष्ट अनुत्कृष्ट रहेगा वो। सामान्य से मोहनीय के जघन्य और अजघन्य अनुभाग का अंतर नहीं होता। सामान्य से मोहनीय ने मोहनीय इन जनरल, क्योंकि उसके जघन्य कब होता है, दसवें गुणस्थान के अंत में, तो जघन्य भी दोबारा जघन्य होने का सवाल नहीं है, और अजघन्य तो नष्ट होकर जघन्य होता है, तो एक बार जघन्य होने पर फिर अजघन्य भी नहीं होगा। क्योंकि मोहनीय का जघन्य अनुभव क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में होता है, इसलिए इसका तो अंतर हो नहीं सकता, और इसके पहले अजघन्य अनुभाग रहता है, इसलिए उसका भी अंतर संभव नहीं है, दोनों का अंतर नहीं होगा। ये मूल प्रकृति की अपेक्षा, मोहिनी इन जनरल, अलग अलग प्रकृतियों की अपेक्षा विचार करने पर सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, चार संज्वलन और नौ नौ कषायों के जघन्य अनुभाग का तो अंतर संभव नहीं है, क्योंकि सम्यक तो समय मिथ्यात्व का भी क्षपणा के समय होते हैं, चार संज्वलन के भी और इसके भी, क्योंकि क्षपणा के पूर्व इनकी सत्ता नियम से बनी रहती है। हाँ, सम्यक तो समय मिथ्यात्व के अजघन्य अनुभाग का जघन्य अंतर एक समय, जो उत्कृष्ट जो है, जब तक सत्ता है तो उत्कृष्ट अनुभाग रहता है, हमने देखा था, वो अजघन्य कहेंगे हम उसको, अजघन्य अनुभाग का जघन्य अंतर एक समय, क्योंकि उसमें गैप ही पड़ जाती है, सत्ता में ही नष्ट हो जाता है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि उद्वेलना होकर इनका उक्त काल तक अंतर देखा जाता है, यानी सत्ता में ही नहीं उस अपेक्षा से अंतर है, अदरवाइज वो अजघन्य बना रहता है और क्षपणा में जघन्य हो जाता है। मिथ्यात्व और आठ कषायों के जघन्य अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, हमने देखा था वो, उसका जघन्य अंतर कहाँ होता है, सूक्ष्म निगोद में, क्योंकि जघन्य अनुभाग की सत्ता वाला सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव जघन्य अजघन्य अनुभाग का बंध कर अंतर्मूर्त में घात द्वारा पुनः जघन्य कर सकता है, और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि जघन्य अनुभाग की सत्ता वाला सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव अजघन्य अनुभाग को बंध कर असंख्यात लोक प्रमाण घात स्थान परिणामों में उतने ही काल तक परिभ्रमण करके यदि अंत में जघन्य अनुभाग को प्राप्त होता है, तो इनके जघन्य अनुभाग का उक्त काल प्रमाण उत्कृष्ट अंतर देखा जाता है। ये अभी हमने चर्चा की थी, जिसको अनुभाग बंदर देव स्थान कहते हैं, अन्य अन्य होते रहे और बाद में वो विशिष्ट उसका स्थान हुआ। इनके अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि इनके जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बतलाया है। अनंतानुबंधी चतुष्क के जघन्य अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त प्रमाण है। जघन्य अंतर जघन्य कब होता है, विसंयोजना से संयोजना किए, तो दो बार संयोजना होनी चाहिए, तभी तो अंतर घटित होगा ना। हाँ। क्योंकि इनके संयुक्त होने के प्रथम समय से लेकर पुनः विसंयोजना कर संयुक्त होने में कम से कम अंतर मुहूर्त काल लगता है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्योंकि जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्व पूर्वक इनकी विसंयोजना करके मिथ्यात्व में जाकर इनसे संयुक्त होता है, उसके पुनः उपार्ध पुद्गल परिवर्तन में कुछ काल शेष रहने पर इस क्रिया के करने पर, कौन सी क्रिया? सम्यक तो प्राप्त करना, विसंयोजना करना और फिर संयोजना करना, उत्कृष्ट अंतरुक्त प्रमाण देखा जाता है। इनके अजघन्य अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त प्रमाण, जब तक जघन्य नहीं हो तब अजघन्य कहलाएगा, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम दो छासर सागर प्रमाण है। क्योंकि इन प्रकृतियों का कम से कम अंतर्मूर्त काल तक और अधिक से अधिक कुछ कम दो छासर सागर काल तक अभाव रहकर, विसंयोजना के बाद की बात है ना, मिथ्यात्व के प्राप्त होने पर द्वितीय समय में पुनः इनका अजघन्य अनुभाग देखा जाता है। पहले समय में जघन्य है, दूसरे समय से अजघन्य शुरू होता है। इस प्रकार यह सामान्य से अंतर का विचार किया, गति आदि की अपेक्षा अपने अपने स्वामित्व को देखकर अंतर ले आना चाहिए। अब नाना जीवन की अपेक्षा, एक्चुअली ये तो मूल विषय में आने ही वाला है सब, अभी देखते हैं। नाना जीवन की अपेक्षा भंग विचय, मोनीय सामान्य की अपेक्षा कदाचित एक भी जीव उत्कृष्ट अनुभाग वाला नहीं होता। हमने जैसे देखा था ना, एक भी जीव उत्कृष्ट स्थिति बंद करने वाला नहीं होता, हो सकता है ऐसा कभी कभी। कदाचित एक जीव उत्कृष्ट अनुभाग वाला होता है, कदाचित नाना जीव उत्कृष्ट अनुभाग वाले होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा तीन भंग होते हैं। जैसे हमने स्थिति में देखे थे भंग नाना जीवों की अपेक्षा, हम अभी ये कौन कौन से प्रकरण है उसको देखेंगे। देखो, नाना जीवों की अपेक्षा भंग वो घटित करेंगे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट के, एक जीव होगा कि अनेक जीव होंगे कि कितने जीव होंगे, जघन्य में भी ऐसा ही है। उसके बाद होगा 12 पृष्ठ पर भागा भाग, भागा भाग का अर्थ होता है कितने भाग प्रमाण वो उत्कृष्ट वाले होंगे, कितने वाले अनुत्कृष्ट वाले होंगे। उत्कृष्ट करने वाले तो संगी पंचेंद्रिय है, तो सब जीवों की अपेक्षा वो तो अनंतवा भाग होगा, और एक इंद्रियादि सब अनंत जो जो है वो अनंत बहुभाग वगैरह होगा। ये सब प्रकृतियों पर घटित करेंगे। उसके बाद प्रमाण यानी परिमाण, वो अनंत विभाग है परंतु कितने हो गए, तो संगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट करने वाले कितने हो सकते हैं, तो असंख्यात करेंगे, और अनुत्कृष्ट वाले तो अनंत कहेंगे। ऐसे सब में घटित करना। उसके बाद क्षेत्र, ये जो उत्कृष्ट करने वाले जीव कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो संगी पंचेंद्रिय लोक का असंख्यात भाग होगा, और स्पर्शन में वहां वो देखेंगे मारणांतिक के समय करते हैं नहीं करते क्या करते हैं, वैसे वो अन्य स्पर्शन भी घटित करेंगे। नाना जीवों की अपेक्षा काल जब कहेंगे, एक जीव में तो लगातार की काल की बात की, नाना जीव में कोई ना कोई उसको करता रहे तो उसको काल लेना। फिर अंतर, अंतर में भी ऐसा, उत्कृष्ट में अंतर हो, कोई भी जीव उत्कृष्ट नहीं करे तो कितने काल तक नहीं करेगा उसको अंतर कहेंगे, ऐसे जघन्य में लेना। उसके बाद 15 पृष्ठ पर भाव, ये सभी जो है उसके जो औदयिक भाव है उसमें तो बताने की कोई जरूरत नहीं, स सन्निकर्ष, एक मूल प्रकृतियों में तो कोई सन्निकर्ष नहीं होगा, परंतु अन्य प्रकृतियों में होगा। जब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग है तो अन्य प्रकृतियों का क्या उत्कृष्ट होगा क्या नहीं होगा? इसका जब जघन्य है तो अन्य प्रकृतियों का क्या हो सकता है? इस तरह से वो सन्निकर्ष बताएंगे। उसके बाद अल्प बहुत्व, यानी वो बताएंगे सबसे कम जीव कौन से है, उत्कृष्ट करने वाले सबसे कम है वगैरह वगैरह, यानी अनुत्कृष्ट वाले उससे अनंत गुणे। भागा भाग में कितने भाग प्रमाण है कहा था, यह सबसे कम कौन से है उनसे वो दूसरे जीव कितने गुणित प्रमाण में है उसकी संख्या यहाँ बताएंगे। फिर भुजगार देखेंगे, भुजगार का अर्थ है पहले कम था बाद में बढ़ाना उसको भुजगार कहेंगे, पहले अधिक था फिर कम होना उसको अल्पतर कहेंगे, उतना का उतना बना रहना उसको अवस्थित कहेंगे, और था ही नहीं और फिर हो गया, जैसे अनंतानंदी की सत्ता ही नहीं थी और हो गई तो उसको अवक्तव्य कहेंगे, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं थी फिर हो गई उसको अवक्तव्य कहेंगे। अब वही पद निक्षेप में वो हानि, यहाँ तो भुजगार इतना ही कहा यानी वृद्धि कही हानि कही, परंतु वो हानि कितनी होती है, जघन्य में जघन्य होती है कि उत्कृष्ट होती है, तो वो पद निक्षेप में आ जाएंगे। अब जघन्य उत्कृष्ट बताएंगे परंतु वो वृद्धि एक्चुअली कितनी होगी, अनंत गुणा होगी क्या, संख्यात गुणा होगी क्या होगा, वो वृद्धि वृद्धि में उसका स्वरूप ने उसका प्रमाण बताएंगे। स्थान प्रमाण में देखो यहाँ लिखा है ना, कर्म के अनुभाग का विचार अभिभाग प्रतिच्छेद 18 पृष्ठ पर, वर्ग वर्गणा स्पर्धक और स्थान इन पांच विशेषताओं के साथ किया है, उसके जो स्थान अलग अलग है यानी वेरिएशंस जो है उसकी वहाँ चर्चा की है, जो मूल पुस्तक में ये सारा विषय विस्तार से आने वाला है। इस तरह से अभी हम प्रस्तावना पढ़कर कल से हम मूल पुस्तक को आरंभ करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत होड़ो। लक्ष्मी।